आज हम संक्षेप में बात करेंगे पूज्य गुरुदेव के युग निर्माण सत्संकल्प के सातवें सूत्र पर। देखिए, ये सत्संकल्प एक सुसंस्कृत व्यक्तित्व बनाने के लिए चार आधार स्तंभों पर जोर देता है। मतलब वो चार बातें जो एक बेहतर इंसान और समाज के लिए बेहद जरूरी हैं। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहली बात है समझदारी। इसका मतलब है सिर्फ आज का नहीं बल्कि दूर का सोचना। आप उस किसान के बारे में सोचिए जो आज बीज बोने का कष्ट उठाता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि भविष्य में अच्छी फसल मिलेगी। इसी को आध्यात्मिक भाषा में कहते हैं तीसरा नेत्र खुलना, जो आपको आने वाली मुश्किलों से बचाता है। इसके बाद दूसरा गुण आता है ईमानदारी का। मतलब आपकी कथनी और करनी में कोई फर्क न हो। श्री चिमनलाल शीतलवाड़ की कहानी तो कमाल की है। उन्होंने 1 लाख की रिश्वत को ये कहकर मना कर दिया कि देने वाले तो बहुत होंगे पर इनकार करने वाला मुझ जैसा ही मिलेगा। यही वो चीज है जिससे विश्वास बनता है ना? अब तीसरा स्तंभ है जिम्मेदारी। क्योंकि देखिए, हम सिर्फ अपने लिए नहीं जीते हैं ना। हमारी जिम्मेदारी अपने स्वास्थ्य, अपने परिवार, समाज, यहाँ तक कि पूरी मानवता के प्रति है। और ये तभी हो सकता है जब हम अपने छोटे से स्वार्थ से ऊपर उठें। और आखिर में चौथा और सबसे जरूरी गुण है बहादुरी। और बहादुरी का मतलब सिर्फ लड़ना भिड़ना नहीं होता। बहादुरी है रोज की मुश्किलों से निपटना, अपने अंदर की बुराइयों से लड़ना और समाज में जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाना। तो संक्षेप में कहें तो समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी, यही वो चार गुण हैं जिनसे एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व और एक बेहतर समाज बनता है।
आज हम पूज्य गुरुदेव द्वारा रचित हमारा युग निर्माण सत्संकल्प की गहराई में उतरेंगे। ये एक अद्भुत पुस्तक है और हम खास तौर पर इसके सातवें संकल्प पर ध्यान देंगे, जो कहता है समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे।
जी, और ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है बल्कि एक पूरा जीवन दर्शन है।
हाँ, पूज्य गुरुदेव ने इन चार स्तंभों को एक बेहतर व्यक्तित्व, परिवार और समाज बनाने की कुंजी बताया है। उनका मानना था कि ये गुण हमारे जीवन के लिए उतने ही जरूरी हैं जितने शरीर के लिए अन्न और जल।
तो चलिए इसको खोलकर समझते हैं।
ठीक।
पहला गुण है समझदारी।
अब आमतौर पर हम समझदारी का मतलब क्लेवरनेस या होशियारी से जोड़ते हैं, लेकिन सत्संकल्प इसे किस तरह से देखता है, मुझे लगता है उसमें गहराई ज्यादा है।
बिल्कुल, आपने सही पकड़ा। यहाँ इसका मतलब सिर्फ होशियारी नहीं बल्कि दूर तक देखने की समझ है कि आज के छोटे से फायदे के लिए कल का बड़ा नुकसान न हो जाए। इसी को सत्संकल्प में दूरदर्शी विवेकशीलता कहा गया है।
अच्छा,
इसमें एक बहुत अच्छा उदाहरण भी दिया गया है।
वो मछली वाला है ना?
जी,
जो छोटे से चारे के लालच में कांटे में फंसकर अपनी जान गंवा देती है, ये अदूरदर्शिता है।
बिल्कुल, और इसकी तुलना की गई है उस अनुभवी किसान से जो आज मेहनत करके कष्ट सहकर खेत तैयार करता है। वो जानता है कि आज का ये परिश्रम ये भविष्य में उसे एक दाने के बदले 100 दानों की फसल देगा।
सही कहा।
अध्यात्म की भाषा में इसी विवेक को तृतीय नेत्र का खुलना भी कहा गया है।
और यही दूरदर्शी समझ हमें ईमानदारी के महत्व को भी दिखाती है, जो हमारा दूसरा स्तंभ है। ईमानदारी मतलब कथनी और करनी में एकता। ये सिर्फ एक नैतिक गुण नहीं है, ये तो विश्वास की नींव है।
हाँ, और यहाँ सबसे आकर्षक बात ये है कि सत्संकल्प ईमानदारी को केवल एक आदर्श के रूप में नहीं देखता बल्कि उसे सफलता का एक व्यवहारिक साधन भी मानता है।
अच्छा
जी, इसमें श्री चिमनलाल शीतलवाड़ का जो उदाहरण है वो अद्भुत है।
हाँ, उन्होंने 1 लाख की रिश्वत ठुकरा दी थी, जो उस जमाने में एक बहुत बड़ी रकम थी, है ना? ये दिखाता है कि ईमानदारी सिर्फ एक नैतिक गुण नहीं बल्कि अपने आप में एक शक्ति है।
और देखिए, उस ईमानदारी का फल उन्हें कैसे मिला। उसी गुण के आधार पर वे आगे चलकर बंबई विश्वविद्यालय के कुलपति बने। सत्संकल्प कहता है कि उनकी गरीबी भी शानदार थी, जिस पर अमीरी के भंडार को निछावर किया जा सके।
वाह, ये दिखाता है कि सच्चा धन चरित्र में होता है।
जी,
ईमानदारी का ये उदाहरण वाकई दमदार है। और विश्वास से ही जिम्मेदारी का भाव भी जुड़ा है, जो हमारा अगला मुद्दा है। ये सिर्फ अपने परिवार तक सीमित नहीं है, है ना?
नहीं, यही इसका मूल भाव है। जिम्मेदारी का दायरा बहुत बड़ा है, अपने स्वास्थ्य से लेकर समाज, संस्कृति और प्रकृति तक। सत्संकल्प हमें याद दिलाता है कि हम एक बड़ी व्यवस्था का हिस्सा हैं और उसके प्रति हमारे कुछ कर्तव्य हैं।
और इसके लिए अपनी संकीर्ण स्वार्थपरता पर अंकुश लगाना पड़ता है।
बिल्कुल।
इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है कि आवश्यकताएं तो पूरी हो सकती हैं, पर वैधव से जुड़ी भौतिक महत्वाकांक्षाएं कभी नहीं।
कभी नहीं। रावण और सिकंदर जैसे लोग भी अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं कर सके। एक जिम्मेदार व्यक्ति निजी जीवन में संतोष रखकर ही समाज के लिए कुछ बड़ा करने का उत्साह जुटा पाता है।
और समाज के लिए कुछ बड़ा करने के लिए जिस आखिरी गुण की जरूरत पड़ती है वो है बहादुरी। और ये सिर्फ शारीरिक बल की बात नहीं है।
नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये नैतिक साहस है। सत्संकल्प में तीन तरह की बहादुरी का जिक्र है। पहली है रोजमर्रा की उलझनों और मुश्किलों से न घबराने का साहस।
अच्छा, और दूसरी बहादुरी है अपने ही भीतर लड़ने की।
हाँ,
अपने जन्मों के कुसंस्कारों से लड़ने का साहस, जिसे एक निरंतर महाभारत कहा गया है। ये तो रोज की लड़ाई हुई। इस बारे में हम अक्सर सोचते नहीं।
आपने बहुत गहरी बात पकड़ी। ये सबसे कठिन लड़ाई है। और तीसरा साहस है समाज में फैले अंधविश्वासों, कुरीतियों और अन्याय के विरुद्ध खड़े होने का। इसके लिए अकेले लड़ना काफी नहीं, सज्जन लोगों को संगठित भी करना पड़ता है।
तो इन सब का क्या मतलब है? समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी, ये केवल अलग अलग शब्द नहीं है, बल्कि एक सुसंस्कृत और सफल जीवन जीने का एक व्यवहारिक ढांचा है।
और दिलचस्प बात यह है कि ये एक दूसरे को मजबूत करते हैं। आप बिना समझदारी के बहादुर नहीं हो सकते, वरना वो दुस्साहस या मूर्खता होगी।
सही बात है।
और अगर आप जिम्मेदार हैं लेकिन ईमानदार नहीं, तो आपकी जिम्मेदारी का कोई मतलब नहीं रह जाता। ये असल में एक ही संपूर्ण व्यक्तित्व के चार चेहरे हैं।
सत्संकल्प इन चार गुणों को हमारे सामने रखता है। अब विचार करने योग्य प्रश्न ये है कि आज के दौर में इन चारों में से किस गुण को अपने जीवन में उतारना सबसे चुनौतीपूर्ण लगता है, और क्या कोई एक गुण ऐसा है जिसे साध लेने पर बाकी तीनों को अपनाना शायद थोड़ा सरल हो जाता है।
आज की इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम पूज्य गुरुदेव द्वारा रचित हमारा युग निर्माण सत्संकल्प के सातवें संकल्प पर गहराई से बात करेंगे।
जी।
और ये संकल्प कहता है समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे।
बिल्कुल। और पूज्य गुरुदेव ने इन चार गुणों को सुसंस्कारिता का, आप कह सकते हैं कि, चार प्रमुख आधार माना है।
अच्छा।
ये व्यक्तित्व के लिए उतने ही जरूरी हैं जितना कि मतलब शरीर के लिए अन्न, जल या वस्त्र।
तो चलिए इन चारों स्तंभों को एक एक करके समझते हैं। इनका असली मतलब क्या है और इन्हें जीवन में उतारा कैसे जा सकता है? तो पहला स्तंभ है समझदारी। और सत्संकल्प में इसे दूरदर्शी विवेकशीलता कहा गया है। ये थोड़ा भारी शब्द है। इसका क्या मतलब है?
इसका सीधा सा अर्थ है कि जो तुरंत मिलने वाला लाभ है ना, उसके लालच में ना फंसना।
अच्छा।
ऐसा क्या होता है कि लोग छोटे और तुरंत मिलने वाले फायदे के लिए ऐसे काम कर बैठते हैं जो उनके भविष्य को अंधकारमय बना देते हैं।
हाँ, ये तो होता है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जिसे कहते हैं।
बिल्कुल।
सत्संकल्प में इसके बहुत ही सटीक उदाहरण भी दिए।
जी।
जैसे वो मूर्ख चिड़िया और मछलियां थोड़े से चारे के लालच में आकर अपनी जान गंवा देते हैं।
हाँ, या फिर जैसे चटोरे लोग होते हैं, वो जीभ के स्वाद के लिए अपनी सेहत ही खराब कर लेते हैं।
सही बात है। और विद्यार्थियों के लिए भी ये बात लागू होती है, जो पढ़ाई का समय आवारागर्दी में गंवा देते हैं, वो बाद में ठोकरें ही खाते हैं।
नशेबाजी भी शायद एक ऐसी ही नासमझी है।
वो तो एक तरह से धीमी आत्महत्या ही है।
बिल्कुल। इसके उलट आप देखें तो समझदारी उस अनुभवी किसान की तरह है।
कैसे?
वो जानता है कि भविष्य में अगर भरपूर फसल चाहिए तो आज खेत जोतने, बीज बोने और रखवाली करने का कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा। वो जानता है कि आज का संयम और परिश्रम ही भविष्य में 100 गुना फल देगा।
यहाँ तक कि अध्यात्म की भाषा में इसे तृतीय नेत्र का खुलना भी कहा गया है।
जी बिल्कुल।
इसका मतलब ये है कि व्यक्ति आने वाली विपत्तियों से बच सकता है
और अपने उज्ज्वल भविष्य का निर्माण खुद कर सकता है।
अच्छा, तो अब आते हैं दूसरे गुण, ईमानदारी पर।
जी।
इसकी परिभाषा तो बहुत सरल दी गई है, कथनी और करनी को एक जैसा रखना।
हाँ, और ये सुनने में जितना सरल है उतना ही गहरा है। इसी सिद्धांत पर आप देखिए, विश्वसनीयता और आपसी सहयोग का भाव टिकता है।
सही बात है।
जो लोग ईमानदार होते हैं वही बड़े उत्तरदायित्वों को सफलतापूर्वक निभा भी पाते हैं।
सत्संकल्प में एक बहुत सुंदर बात कही गई है।
क्या?
कि उनकी गरीबी भी ऐसी शानदार होती है जिस पर अमीरी के भंडार को निछावर किया जा सके।
हाँ,
ये बात मुझे बहुत गहरी लगी।
ये ईमानदारी की असली ताकत को दिखाता है। ये जो ताकत है ये भौतिक धन दौलत से कहीं बढ़कर है।
इसी से जुड़ा एक बड़ा अच्छा उदाहरण है श्री चिमनलाल शीतलवाड़ का।
हाँ, मैंने भी पढ़ा उनके बारे में।
उन्हें 1,00,000 रुपए की रिश्वत की पेशकश की।
उस जमाने में 1,00,000 रुपए तो बहुत बड़ी रकम थी।
बहुत बड़ी, पर उन्होंने मना कर दिया। और जब उस व्यक्ति ने कहा कि इतनी बड़ी रकम कोई नहीं देगा,
तो उनका जवाब बड़ा शानदार था।
हाँ, उन्होंने हंसकर कहा, देने वाले तो बहुत होंगे, पर इनकार करने वाला मुझ जैसा ही मिलेगा।
क्या बात है, ये होता है आत्मविश्वास।
और यही ईमानदारी का नतीजा था कि वो आगे चलकर बम्बई विश्वविद्यालय के कुलपति बने।
तो ये कहानी दिखाती है कि ईमानदारी का फल हमेशा मिलता है, शायद देर से मिले पर मिलता जरूर है।
तो समझदारी और ईमानदारी के बाद सुसंस्कारिता का तीसरा पक्ष है जिम्मेदारी। सत्संकल्प हमें याद दिलाता है कि मनुष्य जो है वो अनेकों जिम्मेदारियों से बंधा हुआ है
जी।
और ये जिम्मेदारियां कई स्तर पर हैं। पहली तो है व्यक्तिगत जिम्मेदारी,
मतलब खुद के प्रति।
हाँ, अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना, ये जो जीवन हमें मिला है इस संपदा का सबसे अच्छा उपयोग करना। फिर आती हैं पारिवारिक जिम्मेदारियाँ, जैसे अपने आश्रितों को, बच्चों को स्वावलंबी और सद्गुणी बनाना।
बिल्कुल, लेकिन मनुष्य की सीमा सिर्फ पेट और प्रजनन तक ही तो नहीं है।
मतलब
समाज, धर्म, संस्कृति और पूरी विश्व मानवता के प्रति भी हमारी जिम्मेदारी है। यहाँ तक कि दूसरे प्राणियों और वनस्पतियों के प्रति भी हमारे कर्तव्य हैं।
ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन सत्संकल्प ये भी स्पष्ट करता है कि इन जिम्मेदारियों को तभी निभाया जा सकता है जब व्यक्ति अपनी संकीर्ण स्वार्थपरता पर अंकुश लगाए
और सादा जीवन अपनाए। बिल्कुल, देखिए भौतिक महत्वाकांक्षाओं की कोई सीमा नहीं है। रावण और सिकंदर जैसे लोग भी इन्हें पूरा नहीं कर सके। जो लोग इन इच्छाओं के पीछे भागते हैं वो जीवन भर असंतोष की आग में ही जलते हैं।
तो जिम्मेदारियां निभाने का रास्ता क्या है फिर?
इसका राजमार्ग निजी जीवन में संतोष और लोकमंगल के कार्यों के प्रति उत्साह से ही बनता है।
और फिर आता है चौथा और अंतिम चरण, बहादुरी।
हाँ,
जीवन में जो उलझनें आती हैं उनसे निपटने के लिए साहस तो बहुत जरूरी है।
बहुत जरूरी है, और ये बहादुरी, ये लड़ाई दो मोर्चों पर लड़नी होती है।
दो मोर्चों पर?
हाँ, पहला मोर्चा है अपने भीतर, अपने ही गुण, कर्म और स्वभाव में जो गहरे बैठे जन्म जन्मांतरों के कुसंस्कार हैं, उनसे लड़ना।
मतलब अपनी ही कमजोरियों से लड़ना।
बिल्कुल, ये एक निरंतर चलने वाला महाभारत है जिसके लिए गीता में अर्जुन को प्रेरित किया गया था।
और दूसरा मोर्चा?
दूसरा मोर्चा है समाज में, समाज में जो अंधविश्वास फैले हैं, कुप्रचलन है, अन्याय है,
उनके विरुद्ध खड़ा होना।
उनके विरुद्ध खड़ा होना, इनके साथ समझौता नहीं किया जा सकता।
नहीं,
इनके विरुद्ध असहयोग और विरोध की नीति अपनानी पड़ती है। और इसके लिए
अकेले लड़ना तो मुश्किल है।
हाँ, तो इसके लिए सज्जन और अच्छे विचार वाले लोगों को संगठित करना भी बहादुरी का ही एक रूप है।
तो ये चारों गुण, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी, ये मिलकर ही सुसंस्कारिता का निर्माण करते हैं।
एक दूसरे के बिना अधूरे हैं।
तो इन सब का सार क्या है? ये चार गुण सिर्फ नैतिक उपदेश नहीं है?
नहीं, बिल्कुल नहीं।
बल्कि एक श्रेष्ठ, सुसंस्कृत और सफल जीवन जीने के व्यावहारिक सूत्र हैं।
प्रैक्टिकल टूल्स हैं।
जी।
जिस तरह सभ्यता को प्रकाशित करने के लिए जागरूकता और पराक्रम की जरूरत होती है, उसी तरह अपने व्यक्तित्व को सुसंस्कृत बनाने के लिए इन चार गुणों को अपनाने का भरपूर और निरंतर प्रयत्न अनिवार्य है।
जाते जाते एक विचार सबके मन में छोड़ना चाहूंगी। सत्संकल्प कहता है कि इन चारों गुणों को जीवन का अविच्छिन्न अंग मानना है। अविच्छिन्न अंग मतलब जिसे अलग नहीं किया जा सकता। तो सोचिए, अगर हम समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को अपनी मर्जी या विकल्प न मानकर,
सांस लेने या भोजन करने जैसी एक बुनियादी जरूरत मानकर जिए,
हाँ, तो हमारे रोजमर्रा के छोटे बड़े फैसलों पर इसका क्या असर पड़ेगा?
और व्यक्तिगत सफलता और समाज के प्रति हमारे योगदान को देखने का हमारा नजरिया कैसे बदल जाएगा? सोचने वाली बात है।